नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री आशीष सूद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल रात फैज़ेलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की निंदा की। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी नई दिल्ली में आज से आम जनता के लिए खुली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े केस वाली पोस्ट को हटाने के निर्देश दिए हैं और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने उमंग वाटिका सेंसरी गार्डन का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की 2 सप्ताह में पहचान करने का निर्देश दिया है, साथ ही इनसे चरणबद्ध तरीके से निपटने के लिए दीर्घकालिक कार्य योजनाएं सुझाने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने पीठ ने कल कहा कि आयोग को सभी संबंधित विशेषज्ञों को एक साथ लाकर विचार विमर्श करना चाहिए और दीर्घकालिक समाधान निकालने चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए कि इन समाधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर आजीविका, उद्योग और आम जनता को कोई नुकसान न पहुंचे। पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण विफल रहा क्योंकि अदालत ने एक स्पष्ट एकीकृत योजना के बजाय कई विशेषज्ञों की राय पर विचार किया। अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 2 और सप्ताह का समय देकर 21 जनवरी तक कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कल रात तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्री सूद ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ अवैध व्यावसायिक दुकानों तक सीमित है जो न्यायालय के आदेशों के दायरे में आती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह के उकसावे में न आएं।
कानून सम्मत तरीके से हो रहे काम को रोकना ठीक नहीं है और जिन्होंने इसे रोका है और पथराव किया है उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, पहचान की जा रही है, 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि जो धार्मिक स्थल फैज़े इलाही मस्जिद वहाँ है पूरी तरह सुरक्षित है, वहाँ पर कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है।
वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस घटना की निंदा की। मीडिया से बातचीत में श्री सचदेवा ने पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने स्थिति को धैर्यपूर्वक संभाला।
सरकारी जमीन पर एक वर्ग द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और हाई कोर्ट का निर्देश आता है कि उस अतिक्रमण को हटाना है और ये लोग वहाँ अतिक्रमण करके अपनी जेबें भरने का काम कर रहे थे और ये लोग खुद भी हाईकोर्ट गए और उसके बाद जब इनको हाईकोर्ट से रिलीज नहीं हुआ तो प्रशासन और पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन जिस तरह से बाद में इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया।
विधानसभा सत्र के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कहा कि सदन में गुरु तेग बहादुर जी का अपमान अस्वीकार्य है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान नेता विपक्ष आतिशी की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की।
जो माननीय अध्यक्ष महोदय को हमें 6 मंत्रीगण ने और हमारे चीफ व्हिप साहब ने चिट्ठी लिखी है, कल दिनांक 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी। उसी समय प्रतिपक्ष की नेत्री डॉक्टर आतिशी जी ने अपनी सीट से खड़े होकर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो व्यक्त दिया वह इतना अभद्र, शर्मनाक और मर्यादाहीन भाषा थी किसे हम लिखकर भी नहीं दे पा रहे। देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी सदन में किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा किसी भी गुरु साहिबानों के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा का उपयोग नहीं किया गया। सभी का यह मानना है कि इस मामले में डॉक्टर आतिशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली में आज से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इस महीने की 3 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पहली बार पिपरवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी।
द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन नामक भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आज जनता के लिए खुल गई है। 6 महीने तक चलने वाली यह प्रदर्शनी पहली बार उत्तर प्रदेश के पिपरवा से लौटाए गए अवशेषों को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए प्राचीन अवशेषों और पुरातात्विक सामग्री के साथ प्रदर्शित कर रही है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में भगवान बुद्ध से सीधे संबंधित इन अवशेषों का महत्वपूर्ण स्थान है। पिपरवा स्थल से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण इसे प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने अपना आरंभिक जीवन बिताया था। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव गुरमीत सिंह चावला ने बताया कि यह अवशेषों की प्रतिपूर्ति बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता को दर्शाती है और शांति तथा समग्र राष्ट्रीय विकास के मार्गदर्शन में मदद करती है। उन्होंने कहा कि यह पहल उन पवित्र अवशेषों और रत्नों को एक बार फिर पिपरवा अवशेषों के साथ जोड़ती है जो औपनिवेशिक काल में देश से बाहर ले जाए गए थे।
1898 के एक्सकवेशन के बाद कि वो जेम रेलिक्स उन कैस्केट्स के साथ और भगवान बुद्धा के अस्थि अवशेषों के साथ वो पहली बार किसी एक जगह में लोगों के लिए रखे गए हैं जो लोगों के लिए ओपन है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग यहां आकर इन अवशेषों को देख सकें और इनके बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर सकें। यह प्रदर्शनी बौद्ध धर्म से जुड़े सभ्यतागत संपर्कों तथा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्य शरण।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया है कि वो भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटा दें। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए दोनों राजनीतिक दलों को भाजपा नेता को निशाना बनाने वाली कोई भी सामग्री पोस्ट करने से भी रोक दिया है। अदालत ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी निर्देश जारी किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA कल आवाजों के जुगनू पहल की शुरुआत करेगा, जिसका उद्देश्य भारत की चुनिंदा प्रसिद्ध आवाजों को दस्तावेज करना और संरक्षित करना है। इस प्रकाशन को पुस्तक और ऑडियो दोनों रूपों में जारी किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार और प्रामाणिक सामग्री शामिल होगी। इसमें 31 ऐसे व्यक्तियों की यात्रा को दर्शाया गया है जो आकाशवाणी, FM चैनलों, वॉइस ओवर इंडस्ट्री, प्रसारण और मंचीय कविता से जुड़े रहे हैं। IGNCA ने बताया कि यह प्रकाशन रेडियो और आवाज आधारित कहानी सुनाने की सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है, जो दर्शकों के साथ लंबे समय से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। केंद्र ने कहा कि यह परियोजना ध्वनि की अनोखी शक्ति को दर्शाती है, जो सामूहिक स्मृति, स्नेह और विश्वास को आकार देती है। केंद्र ने यह भी बताया कि यह पहल सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता IGNCA सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी करेंगे। इसमें प्रसिद्ध कलाकार हरीश भिमानी, शम्मी नारंग और सोनल कौशल भी शामिल होंगे। ये पहल नई दिल्ली स्थित IGNCA परिसर में दोपहर 4 बजे से शुरू होगी। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल ने आज उमंग वाटिका सेंसरी गार्डन का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में सेंसरी स्टिम्युलेशन, भावनात्मक कल्याण और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ये सेंसरी गार्डन विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा जिन्हें तंत्रिका विकास पर विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि यहां उपलब्ध गतिविधियां बच्चों के अनुभवों को समृद्ध करेंगी और उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बनाएंगी। ये उत्तरी भारत में किसी सरकारी संस्थान में स्थापित अपनी तरह का पहला सेंसरी गार्डन है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज विशेष परिषद बैठक में 2026-27 सत्र के लिए अपने बजट की प्रस्तुति की। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और NDMC सदस्य प्रवेश वर्मा ने की। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि NDMC ने मुनाफा के बजट की परंपरा को जारी रखा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में 143 करोड़ 5 लाख रुपए का मुनाफा अनुमानित है। वहीं एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतर मेडिकल योजना भी लाई जा रही है। श्री चहल ने बताया कि बजट 2026-27 में संपत्ति कर नहीं बढ़ाया गया, जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के सिख गुरुओं पर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने सुश्री आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाकर उनसे माफी मांगने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस मामले को लेकर पटल के समीप आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हंगामा कर रहे सदस्यों से शांति बनाने और अपने स्थान पर जाने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन नारेबाजी लगातार जारी रही। श्री गुप्ता ने इसे खेद का विषय बताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने जो वक्तव्य दिया वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सत्र के दूसरे दिन गुरु तेग बहादुर के सम्मान में हो रही चर्चा के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। श्री गुप्ता ने नेता विपक्ष से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने को कहा। 2 बार स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष ने पुनः नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने सदन को सूचित किया कि नेता विपक्ष आतिशी गोवा गई है, जिसके कारण वह सदन में उपस्थित नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता विपक्ष की अनुपस्थिति को लेकर कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि वह उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा कि कल प्रदूषण पर चर्चा की मांग करने वाली आतिशी आज गोवा चली गई, जो एक गंभीर विषय है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री तथा राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, गांधीनगर से विधायक अरविंदर सिंह लवली और जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग की। श्री सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिल्ली की धरती पर हुई और यह न केवल सिख समाज बल्कि पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए गर्व का विषय है। वहीं दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि गुरुओं के सम्मान में हो रही चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणी से सदन की मर्यादा भंग हुई है और आम आदमी पार्टी को इस विषय में माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि विपक्ष के रवैये से उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है और इस प्रकार की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सुश्री आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में हुई आज कार्यवाही की समीक्षा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण कल से शुक्रवार तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल ओल्ड सब्जी मंडी, बर्फखाना, शक्तिनगर, विजयनगर, रूपनगर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, पुलिस लाइन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। राजधानी में आज सुबह के समय कोहरा छाया रहा, वहीं दिन में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दिल्ली NCR में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री आशीष सूद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल रात फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की निंदा की। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी नई दिल्ली में आज से आम जनता के लिए खुली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया है कि भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े केस वाली पोस्ट को हटाने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।